राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण
परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं उनके लिए कोई बात बताई जाए ध्यान देकर आप लोग सुने। सत्संग में जितनी बातें सुनी जाती है उनमें से जो परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन बताए जाए उन साधनों में से सुगम साधन जिस भाई बहन को मालूम देता हो तो ये साधन सुगम है उसी साधन का अनुष्ठान शुरू कर दे। जैसे संसार में धन का लोभ होता है ऐसा लोभ न करें परंतु आवश्यकता जरूर समझे। आवश्यकता होती है एक लोभ होता है जैसे अन्न है जल है वस्त्र है मकान है इसकी आवश्यकता होती है। इसके निर्वाह के लिए चीज हो वो आवश्यक होती है संचय करने के लिए जो विचार किया जाए ज्यादा वो लोभ होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थों को मिले तो कुछ संचय न करें ऐसी बात नहीं है। गृहस्थाश्रम में संचय की आवश्यकता है। संचय और चीज है लोभ और चीज है। लोभ भीतर की लालसा है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है नरकों का साधक है। इस वास्ते अपने लोभ ने जो आ जाए वो खर्च करो सामान जीते से संग्रह हो जाए तो कोई बात नहीं है गृहस्थ के चाहिए ही। तो जैसे वो लोभ करते हैं इस तरह से साधन में भी एक लोभ होता है ये भी मैं कर लू ये भी कर लू ये भी कर लू ये भी कर लू तो एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए एक एक निर्णय कर ले एक एक रोजिना की एक एक बात ले तो फिर तो कहना ही क्या है परंतु एक दो बात ऐसी पूरी 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 पालन करने के लिए चेष्टा करे तो उस एक बात से भी कल्याण हो जाए। दूसरी बातें भी सहायक है सुनना भी सहायक है और साधन में काम आ जाए कोई सरल बात आ जाए तो वो भी काम में ले लें पर जो आपको सुगम बातें दे वो सुगम साधन को करना शुरू कर दे। तत्परता से सुगम का साधन के शरण करण साधन करना शुरू कर देने पर जो कठिन साधन लगते हैं वे सुगम हो जाएंगे और जो नहीं दिखते नहीं बात होते ऐसे असंभव भी सामने दिखने लग जाएंगे। जो जो साधन करेगा तो त्यों सुगमता उसमें अधिक मालूम देने लगेगी और वो साधन तत्परता से होगा और साधन खुद अगाड़ी साधन पैदा करने के लिए बड़ी मदद है उसकी। एक साधन भी ठीक तरह से किया जाए तो दूसरे साधन उसके आ जाते हैं। जैसे विरुद्ध काम है उसके असाधन है, निषिद्ध वो भी शुरू कर दे तो दूसरे आ जाते। जैसे एक बी तम्बाकू पीना शुरू कर दे तो कई आदमियों को वो सिखा देगा, आप भी विशेष हो जाएगा। ऐसे नाम जप करने वाला आप करता औरों को भी सिखा देगा, औरों के करने से भी हमारे लाभ होता है, साथी हमारे कई हो जाते हैं तो उससे उत्साह बढ़ता है और ठीक साधन होता है। तो जो सुगमता से समझ में आ जाए उसका आचरण करना शुरू कर दे। या तो एक सत्य भाषण है तो अपने सच्चा बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। उसमें कम से कम निरर्थक झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल बंद कर दे। एकदम हंसी दिल्ली में झूठ बोलते वो भी कम कर दे। कम क्या छोड़ दिया है उसको। जहां कोई अर्जा बात अधिक है तो वहां भी झूठ न बोले, परंतु ख्याल रखे कि निरर्थक झूठ बोलते हैं। छोरा उठता नहीं, सो उठा रहे दोपहर दिन आया है, दिन तो छोटा अभी उगा ही है थोड़ा, ऐसे बहुत दोपहर दिन आया है, इतना हुआ है, इतना हो गया सर, इतने आदमी आ गए, बहुत मांगे कितने हो गए। ऐसे मुफ्त में ही झूठ बोल करके जबान की शक्ति का नाश नहीं करना चाहिए। सत्य बोलते रहोगे तो आपकी जबान में एक ताकत पैदा होगी, संयम करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बैटरी का बल्ब होता है ऐसे होता तो लाइट तेज जाती है, जो वहां से बाहर जब चाक चिक्के पना होता है निकाल ले तो उतनी तेज लाइट नहीं जाती। संयम किया जाता है तो उसमें एक विलक्षण शक्ति आती है, ताकत आती है। सो सत्य भाषण करना, कड़वा नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, दूसरे की निंदा नहीं करना, वृथा बकवाद नहीं करना, ये बातें अगर जबान में रखे तो एक ताकत होगी। अभी निरर्थक बकवाद न करें, निरर्थक बातें न करें, अखबार में ऐसा है ऐसा है वहाँ आया है वहाँ एक छोरा दो माथा का जन्मा है, तो मत कहोगे उससे। ऐसी निरर्थक बातें हैं जैसे अपने फायदा ना दूसरे का फायदा, ऐसी पूरी कथ न करें, वो ऐसा है वैसा है वैसा ऐसे संयम रखें। जितना जबान का संयम रखोगे उतना ही आपकी जबान में सामर्थ्य आवेगी, वचन का असर होगा। तो झूठ नहीं बोले, वाकचाल न हो, वृथा बकवाद न करे, चुगली न करे, निंदा न करे, किसी का भी तिरस्कार न करे, कड़वा जबान न कहे, तो बड़ा बढ़िया काम होगा। बस राखो जीव कहे मबाको, कड़ुआ बोलो पीत किसी, लोह तणी तरवार लागे, जीव तणी तरवार जिसी, भारत आगे रे भारी, एक नजीव प्रताप हुआ मिलिया जगे मांडवा माही, जीव किया पलमा हिजुआ। इस तरह से बस राखो जीव कहे मबाको, तो बस राखो जीव थोड़ी बस में रखो, जिह्वा के बस रखत ही रस सब ही रह जाए, खट रस नौ रस निरस वे भाखे जो अणभा। जो गलती बोलता है उससे नौ रस खटरस सब खराब हो जाते हैं। खटरस तो भोजन, नौ रस काव्य के जो हो अनभाव बोले, जिसमें व्यक्त बिना भाया जाए तो वो सब निरस हो जाता है। कोई आ जा सज्जन, उसको बढ़िया भोजन कराओ, आप बड़ा अच्छा भोजन कराया, मिठाइयां दीजिए, बहुत तैयारी से भोजन किया। भोजन करने के बाद पूछे क्यों जी ऐसा भोजन कभी मिला आपको? अब वो खत्म हो गया सब, बहुत बढ़िया भोजन बनू। विचार उसके आता है कि ऐसा मैं सुनता तो मैं खाता ही नहीं, अब क्या करूं, भोजन कर चुका। तो ऐसे एक कड़ू जवान कहने से खटर से निरस हो जाए। ऐसे ही काव्य में जो रस चल रहा है उसमें बीच में विरोधी रस की बात आ जाए तो नवरस खत्म हो जाए, तो खटरस नवरस नीरस वे भाकर जो अन भाए। इस वास्ते जीव को बस में रखनी चाहिए। भारत आग आ गए रे भारी, एक जीव प्रताप हुआ। अंध पिता के अंध सुत भाख्यो कटुम भीम, भारत कुल गर्त भयो आई वित विपत असीम। पांडवों का जिग हो रहा था, उसमें मैदानों ने एक सभा दी थी। दान में बड़े माया माया भी बहुत होते मैदान आदि, संबर है माया है। तो एक सभा बड़ा भाई मकान सभा बनकर दिए थे, उसमें एक ये विलक्षणता रखी कि जो पांडवों के साथ दूसरा मन में बैर भाव रखे उनको उल्टा दिखेगा। दरवाजे की जगह दीवाल दी गई, दीवाल की जगह दरवाजा होगा। तो ऐसी बात तीन थी, जल देगा थल दिखेगा, थल देगा जल दिखेगा। तो विशुद्ध त्याग किया एक बहुत बड़ा, चारों भाई विजय करके आए, यज्ञ किया उस सभा में। तो दुर्योधन आए, दुर्योधन आए तो पहले तो भीत की लगी, उसको दिखा के दरवाजा है, फिर वहां थी दीवार। तो दरबार ने प्रार्थना की, इधर आओ आप, यहाँ यहाँ दिखता था दरवाजा, वहां तो भीत थी, भीत ही थी वहां दरवाजा था। तो उस दरवाजे पे चले गए, तो वहां जमीन थी, उस जगह पानी दिखा, तो उस जगह अपना बागा ऊंचा ले लिया, और आगे जल था, उस जाय गिरे एकदम ही। तो द्रौपदी ऊपर बैठी थी उस हसी, और भीमसेन ने कहा कि अंधों के तो अंधा ही होते हैं। युधिष्ठिर महाराज गए गजब मत बोले, वो दुर्योधन लौट गया वहां से। उसकी बड़ी भारी रीस थी पहले, फिर भी बहुत रीस, जैसे भारत हो महाभारत गया। तो भारत आगे आगे रे भारी, एक दीप प्रताप, एक दीप प्रताप से हुआ। तो मीठा बोलन नव चलन पर ओमन ठकल है, पांचों चंगा नानगा हरि बजा हथा देन। मीठा बोलन, मीठा बोलो भाई, करवा क्यों बोलो। घर पर कोई मांगने वाला आ जाए, कोई नहीं देना हो तो भाई हम देखते नहीं हैं, हम तो ऐसे कह दो, ताड़ने क्यों करो भाई। बात में तो सच्ची सच्ची कह दो, डरो मत, भय मत रखो। सत्य बोलते हैं आदमी का भय मिट जाता है, सच बोलना वो झूठ बोलने वाले को भय लगता है, अन्याय करता है उसका खुद अन्याय खुद को खा जाता है उसको। इस वास्ते मीठा बोलो, प्यार से बोलो, आदर से बोलो। कोई रास्ता पूछे तो प्यार से दो, ऐसे ऐसे रास्ता जाता है तो आपकी बात की वो जो मिठास है वो लेता जाएगा, बहुत दूर तक उससे चिंतन होगा कि कैसा सज्जन आदमी है, कितना प्यार से रास्ता बताया। ऐसे अमृत का विस्तार करो, जहां रहो वहां अमृत फैलाओ, विस्मत फैलाओ। अरे कड़वी जबान कहो तो वो कड़वी जबान भी तो तीर की तरह लगती है। जीभ कहते हैं लोह तरी तरवार लगे, जीभ तरी तरवार जैसी, लोह की तरवार इतनी लगती थी जीभ की तरवार भी। लोह की तरवार का घाव तो मिल जाएगा, पर जीभ का घाव मिलता नहीं है। वो भीतर में ऐसा खटकता है, जलता रहता है, तो वो यूं मलम पट्टी नहीं होती उसकी। इस वास्ते बस रखो जीव, जीव ने बस न रखो। मन में फिर धनीरी माला, पकड़े नहीं जमदूत पलो, नहीं मिले बकने से माया, मां को कम दो बोलो वो भरो। बस रखो जीव कहे मां को, तो ज्यादा पकड़ने से माया भाया, रे कम बोलो वो भलो, बोलो कम। कान दो दिए जीभ एक भी है, इसका अर्थ है कि सुनो ज्यादा बोलो कम, ऐसे रखो। मेरे मत तो ऐसे लागू मत कर देना कोई नियम, मेरे तो बोलने का स्वभाव है, बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, परंतु संयम रखने वाला साधन करने वालों को ये कहता हूँ, जो पारमार्थिक साधन करना चाहे उसको बोलना कम चाहिए और सुननी बातें शास्त्रों की संतों की बातें सुननी चाहिए अधिक, ऐसे ही बोलना कम चाहिए तो काम करना चाहिए ज्यादा, दूसरों की सेवा करना है तो बोलना नहीं करना चाहिए, इस बात से सेवा करना चाहिए, जीव से कम बोलो, मीठा बोलो, तो मीठा बोलने से मधुर वाक्य प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंती जनतवा, कुत्ते कोई पुरस्कार कर प्यारा बोल तो राजी हो जाएगा, तो प्रिय वाक्य प्रदान है ना सर्वे तुष्यंती जंतु जनतवा तस्मात प्रियमे वक्तव्यम भसने का अतिरिक्तता, इसमें कौन से पहले कर्ज होते हैं, मीठा ही बोलो कड़वा मत बोलो, क्यों का स्वभाव हुआ कड़वा बोलने का, तो वो स्वभाव सुधारो, मीठा बोलने का स्वभाव बनाओ। भगवान के लिए एक संत ने कहा किसने बुलाया कृष्ण तुझको मीठा बोलना, भगवान को कहा कृष्ण हुक्म है तुम्हारे मीठे बोलना किसने सिखा दिया, तो सिखाया कि हमारा तो देव है देवी की संपत्ति रहती है, तो उसे बड़ा आदर होता मन को शांति मिलती है, पैसे खर्च नहीं होते पुण्य हो जाता है मीठा बोलने से, हरेक साथ में प्रिय वाक्य प्रधान है, प्रिय वाक्य को कड़वा मत बोल, ऐसे संयम रखो हरेक इंद्रिया का, तो ये बात सुनी कि अपने सत्य बोलना है तो अपने संयम रखो, दिन भर ख्याल रखो कभी निर्थक झूठ क्यों बोलो, फिर सार्थक भी झूठ क्यों बोलो, सच बोलने बोलते आपकी जबान सत्य हो जाएगी, शास्त्र में लिखा है योग दर्शन में आता है कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्व, सत्य बोलने वाला जबान क्या लेता है तो वो सिद्ध हो जाती है, उसके असर हो जाता है, वैसा ही वरदान देना श्राप देना ये हो जाता है सिद्ध हो जाता है, तो मीठा बोलने से बड़ा होता अच्छा होता है, जो संत होते हैं उनकी ऐसी बात होती है तो उनके स्वाभाविक गुण होते हैं, देवी संपत्ति के गुण स्वाभाविक आते हैं, भजन ध्यान करते हैं संयम से रहते हैं, उनमें सत्य बोलना आदि सीखना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक ही झूठ कपट करना आता नहीं, वो कपट कर नहीं सकते, मैंने साधु को देखा क्रोध कर क्रोध करना नहीं आता उनको, ऐसा मैंने देखा तीन पांच मुनि जी महाराज थे मुरली राम जी, कभी चार नकल है यूं करे यूं नकल करे, वो नकल करने नहीं आ रही, ऐसे देखा तो उनकी स्वाभाविक अच्छे वचन बोल रहे से उसके भीतर सदगुण सदाचार स्वाभाविक आते हैं, स्वतः आते हैं, स्वभाव हो भजन हमारे, और भगवान के भक्तों का स्वभाव जो होता है भगवान के भजन करने का, उनके आप साफ भजन होता है और बात मीठी निकलती है। एक फूला सिंह जी संत हुए, सिख थे पंजाब में, उनका नाम फूला सिंह था, तो बचपन से ही वे भजन ध्यान में लग गए और गायें चराया करते, पहले बछड़ा चराते वे गायें चराते, ब्याह किया नहीं, भजन करते थे अपना, तो भजन में वो भजन नहीं कहते थे, वो लेखा करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेखा करते, गांव के आदमी लेखा करते हैं आदमी ऐसे ही हूं ऐसे लेखा करते हैं, तो मैं लेखा करता हूं, तो गायें चराने जाते तो गायों को खड़ी कर कहता गेहू माता ये गेहूं के खेत खड़े हैं, इसमें ऊपर ऊपर का भाग तो है मनुष्यों का और नीचा का भाग सब तुम्हारा है, अभी इसमें मनुष्यों का भाग है तो अभी नहीं चलना, ये तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारा ही भाग है ये तुम्हारे को मिलेगा, और अभी मनुष्यों का भाग है चल नहीं जाता, तो फिर ऐसा कह के तुम्हें तुमने क्या लग जाते, गाय खेत में नहीं जाती, कई छोरों को पता लगा गाय चलने वालों को, तो वे भी अपनी गाय उनमें रख देते, वे खेल कूद करते हैं अपना, वे मंत्र सुनाते हुए गए थे खेत में नहीं जाते, ऐसे भी लिखा करते थे। उनके कई चमत्कार की बातें सुनी। एक पंडित ने उनका लेख लिखा था, बहुत पुराने कल्याण में आई थी कथा। तो उसको वो पंडित लिखते हैं कि मैंने महाराज से पूछा, पढ़ लिख नहीं बिल्कुल, बूढ़े हो गए थे, सौ वर्ष की उम्र में शरीर गया और भजन में ही रहते अपना बात वो लेखा करते हैं। तो उनको पूछा कि महाराज ये ऐसे कुछ संत होते हैं और सत्य बोलते हैं तो उनके जवान सत्य हो जाती है, वो कह देने हो जाता है। तो उन्हें वास्तव में ये पोथी में लिखी है बात, ये पोथी में लिखी है, हाँ महाराज पुस्तक में लिखी है। वे समझे ये बात तो आचरण में लाने की है, ये पुस्तक में थोड़ी मिलेगी, पढ़ने के थे नहीं। आज पुस्तक पढ़ने वाले कहते हैं क्या ये आचरण में आती है, अरे आचरण तो घास है ही बात, पर वो आचरण में न आने से उनको आश्चर्य होता है, ये कहीं मनुष्य आचरण में ला सकता है। तो उन्होंने ये आश्चर्य किया। तो महाराज ये क्या कारण है, तुम्हें अपन आदमी जो व्याख्या की मेरे पर असर पड़ा, किस टीका में मैंने ये व्याख्या नहीं देखी, योग दर्शन की टीका व्यास भाष्य है उसमें टीकाएं भी है, मन टीका में ये अर्थ नहीं देखा। उन्होंने अर्थ बताया, पूछा कि महाराज क्या कारण है साथ बोलने वाले के जमान सत्य क्यों हो जाती है, जो कह जैसे हो जाए साफ दे दो बरदान दे दो, जो कह जैसे हो जाए क्यों हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सत्य भाषण करते हुए उस सत्य प्रतिष्ठा हो जाती, भीतर में सत्य भाव हो जाता है, तो बात होने वाली होती है वही निकलती है, निकलती नहीं। ये व्याख्या नहीं देखी मैंने, टीका में नहीं देखा कि जो होने वाली बात है वही निकलेगी, क्योंकि सत्य बोलते हैं तो होने वाली बात के नहीं होने वाली बात निकलेगी नहीं जबान से, इस अंतकरण सत्य हो जाता है। तो ऐसे सद्गुणों के धारण करने से बहुत विचित्रता आ जाती है मनुष्य में, आपसे आप विलक्षण सिद्धि हो जाती है। तो अपने सिद्धि क्या करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए जबान से सत्य बोलने की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो तप क्षीण होता है, तपस्या करते हैं वो उसमें नष्ट हो जाती है, झूठ बोलने से, बकवास करने से, निरर्थक बोलने से। देखना है, सुनना है, बोलना है, करना है, सोचना है, ये जो चारों चीजें हैं ये बड़ी संयम रखनी, बोलना भी कम, ऐसे देखना भी कम, और सुनना भी बहुत बातें कम, और हाथ से करना भी करनी चाहिए ज्यादा, मेरे तक किसी की हिंसा आदि नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भीतर से किसी का अनिष्ट भी नहीं चिंतन करना चाहिए, विजय इसकी नुकसान हो जाए, इसका अनिष्ट हो जाए। तो सोचना, समझना और करना और सुनना और देखना, इन बातों से क्या करे कि निषिद्ध न करे, साथ वेद काम करे, साथ की आज्ञा है, अपने व्यवहार की बात है, और जो वर्ण है उन आश्रम है उनके अनुसार नियम है, इन नियमों का पालन करे तो उसमें शक्ति बढ़ती है, भजन में बड़ा बल मिलता है, भजन में सिद्धि हो जाती है। तो इन बातों का ख्याल रखे, अपना किसी का भी अनिष्ट ना करे। हमने तो पुस्तक में यहाँ तक पढ़ा है जो किसी का ही बुरा नहीं करता वो एक सेवा करता है, किसी का ही बुरा नहीं करता, नुकसान नहीं करता, उसकी सेवा हो जाती है, संसार की सेवा। आश्चर्य की बात है, सेवा तो कुछ करने से होती है, देने से होती है, कभी झूठ न बोलने से सेवा हो जाती है, असत्य न बोले उससे भी। क्यों जाती है सेवा, कि इतनी तो बच गई ना, और उनका मानो एक आदमी झूठ नहीं बोलता है तो असत्य का भाषण न करने से इतनी संसार को सेवा मिली, और दूसरों पर असर पड़ता है, दूसरा भी सत्य सीखेंगे, बुरा नहीं करने से, किसी का नुकसान न करने से भला हो जाता है, उससे एक तप होता है, एक उसे पुण्य होता है। मैंने कहा था एक दिन, जैसे गाड़ी में चढ़े तो कोई डब्बे में बैठे भी मना न करें तो असर पड़ता है कि भले आदमी है, हम उन्होंने क्या किया अपनी जगह से बैठ रहे हैं। तो आजकल के जमाने में बुराई न करना भी भलाई है, ऐसी बात हुई थी कई वर्षों पहले की बात है। मैंने पूछा था गोविंदकारी ने कि महाराज इतना सत्संग करते हुए भी हम लोगों का जो आचरण होना चाहिए शुद्ध नहीं हो रहा है। थोड़ा कहा आजकल बुराई से बच जाए ये भी भलाई है, बुराई से बच जाए। सत्संग करिए इतनी देर तक चुप रहोगे आप सत्संग सुनोगे तो ये एक बड़ा भारी तप है, एक बड़ी भारी भली बात है। सुंदर सुंदर बातें सुनने में आती है, वो कोई आचरण में भी आ जाती है और वक्त पर हाजिर हो जाती है। बात आपने सुनी है ऐसे याद नहीं है, काम पड़ते चट भीतर में आ जाएगा, भाई ये नहीं करना है सत्संग में सुना है, तो ये आपके भीतर जमा रहती है। हमारे एक मित्र थे संत, वो भगवान को कह रहे थे अच्छी अच्छी बातें लेकर के भगवान से प्रार्थना करते कि महाराज आपके खजाने में ये बात रखो, मेरे काम पड़े तो मेरे को दे देना, मेरे को याद नहीं रहता मैं भूल जाता हूँ, आप रखो। तो साधना अच्छा बढ़ गया। तो संतों की ऐसी युक्तियां हैं कई जो भगवान की वहां जमा कर दी, तो भाई जब कभी काम पड़े तो मेरे को दे देना नाथ। तो भगवान भी याद रहते हैं, भगवान के भरोसे पर काम करने से उसके बड़े ठीक ठीक आचरण हो जाते हैं। सब शुद्धि क्यों, देवी संपद है, देवी संपद देव परमात्मा की है, तो परमात्मा का आश्रय लेने से देवी संपत्ति गुण आ जाते हैं। इसलिए जवान से हमेशा बोले विचार कर वचन काट दिए, बैठ संभाग माए बाहर मुढ़े बाहर वसन कर दीजिए, सोच विचार बैठ स्वभाव मुंडे बाहर वचन काट दिए सोच विचार। सुचिंद चौकतम सुविचार यत कृतम तो सुदीर्घ काले बिन याति विक्रिया। सुचिंत चौकतम अच्छा विचार करके अच्छी तरह से बोले तो विकार नहीं होता, उनसे लाभ होता है। तो लाभ होता है यही दुनिया का उपकार है, तो इसका पुण्य होता है। ये तपस्या होती है, तपस्या में संयम तो होता ही, तपस्या नाम संयम का ही है। इस तरह से अपने तो मीठा बोलना नहीं मिटाला, कोई टेढ़ा बोल तो उसे नम्रता कर ले तो कैसी बढ़िया बात है, लड़ाई नहीं होगी। निकलत गाली एक है उथलत गाली अनेक, जे गाली उथले नहीं रहे एक की एक, एक ने गाली दी ने दूसरे दो दिन चार दिन लड़ाई हो जाती है बहुत। अरे एक ने गाली दी एक ने चुपचाप सुन दे शांति से, तो कुएं में भाठा डाले तो पीछा क्या आवे, वो तो गया। ऐसे पत्थर की तरह बोले पीछा ना बोले तो शांति हो जाती है, नहीं तो लड़ाई हो जाती है आपस में। वो दो चार कहे वो पांच सात कहे फिर मारपीट हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। तो पहले से शांत रखे, लड़ाई होने ही न दे। घर में ऐसा विचार करे किसी के द्वारा कोई गलती हो जाए तो शाम को रोजाना विचार करे, नहीं तो रविवार के दिन सब मिलकर विचार करे, थोड़ा थोड़ा जब कीर्तन करे और कोई गलती करे तो उससे कहते भी माफी मांग लो, उन्हें कहते माफी दे दो, साथ में बैठे हो जाता है कभी, इस वास्ते माफी दे दो और वो बढ़ाओ मत। कभी कभी छोले आपस में लड़ते हैं तो थोड़े तो लड़ लेते हैं, उन छोड़ों की लड़ाई को माताएं ले ले रही आपस में, फिर वे लड़ती रहती है थोड़ा थोड़ी देर में साथ में खेलने लग जाए, अरे उनमें सदा के लिए बैर बन जाता है आपस में। ये बड़े हैं ना तो बैर भी बड़ा होता है इनके, छोटे छोटा छोटा होते बेचारे में, तो उनकी शुद्धि हो जाती है। इस वास्ते आप ऐसा पक्षपात करके और अपने घर में बैर न बांधो। गृहस्थ में रहने में आपस में प्रेम रखने से गृहस्थ होता है स्वर्ग की तरह आनंद लेने वाला, और उनके घरों का अन्न पवित्र होता है। और जो गर्भ खराब आचरण करते हैं गड़बड़ी करते हैं उनके घर का अन्न भी अच्छा नहीं होता है, उसका असर पड़ता है। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है कहीं देखी भी है, तो जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। तो अन्न शुद्ध घर का हो, शुद्ध कमाई का हो, अच्छे व्यवहार का हो, ऐसे प्रेमी के घर का अन्न होता है बड़ा प्रिय लगता है। मैंने दामोदर की कथा सुनाई थी, दामोदर एक था कांची में रहने वाला, शुद्धि से अपना लो मिलता भिक्षा में लाता और अपने स्त्री को कह दिया ब्याह होने पर कि अपने गृहस्थ का धर्म है कोई आवे तो भोजन कराना उनको, ये अपना खास धर्म है अन्नदान गृहस्थ का। तो वो भिक्षा लाते जब बना देती वो वही फिर बाबा जी आ गए, संत भगवान खुद बन करके आ गए। भाई उस दिन भिक्षा में कुछ मिला ही नहीं, खाली आ गए। तो संत बोले बाहर से, दामोदर है दामोदर, हाँ महाराज। गया पगा पड़ा, कह देखो बेटा बूढ़े हो गए हम, अब हम तो ज्यादा जा नहीं सकते, आज तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे, भिक्षा करेंगे। दामोदर ने देखा क्या करेंगे, आज तो हमारी एकादशी होगी, बिना एकादशी एकादशी करेंगे, भिक्षा करेंगे। कुछ मिला ही नहीं भिक्षा में। कहते ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, थोड़े भात बना देना काफी। अब वो दामोदर भीतर गए, महाराज वो भीतर लाए बैठाए, स्त्री को पूछा कि अब क्या करें, कहे घर में तो अन्न है ही नहीं, आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है, कहां से भोजन कराए। देखो भाई अतिथि सत्कार करना है, तो ब्राह्मणी भी बोली बात तो ठीक है, आप ठीक कहते हो, वरना करें क्या। तो दामोदर की बड़ी चिंता हुई, तो ब्राह्मणी बोले कि चिंता मत करो, आप कतरनी ले आओ, कतरनी नाई के घर से कतरनी ले आओ। कतरनी ले आए, किसे क्या करेगी, तो माथे का केस ऊपर ऊपर का काट दिया, पास ऊपर बांध दिया केस, वे काट कर दोनों ने रस्सी बनाई, रस्सी बनाई, बाद में गया पैसा दो पैसा बटा, उतना चावल दिया, सस्ता भाव था, चावल लाकर बना दिए बाबा जी को, चोर चटनी बना दी, बाबा जी पा दिए, पाते पाते देखा भाई सब पा लिया। अब देखो दामोदर, अब भैया अब बस बहुत बहुत हो गया, बहुत पा लिया, बहुत हो गया, अच्छी बात है, लज्जा रहेगी, लाते क्या खावा इसे। अब वह आराम करने लगे, तो दामोदर जाए फटे कपड़ों से आओ, हवा करे पंखा लावे कहां से, घर में तो कुछ था नहीं। बोले देखो दामोदर, शाम को थोड़ा सा भात बढ़ा देना, मुझे ज्यादा नहीं हो, जरूरत नहीं है, अब बूढ़ा सही है, कहां जाएंगे, रात यहीं रहेंगे। ठीक है महाराज, चरण साफ भी करता है महाराज, वो हवा करता है, जल भा दिया, सो गए, आराम कर लिया। शाम की बद में फिर गया, तो क्या करें, कहते कतरनी तो अपने घर में है ही, कहीं कहीं कतरों तो सब कर सब कतर लिया, मेरे जैसा मुंडा कर भी बेचारा माता हो गया बेचारे ब्राह्मणी का। अब कपड़ा बांध लिया उसने, ऊपर वो ले गया, उसने उतने चावल आ गए, भात बना दिया, बाबा जी भोजन करा दिया। अब एक चटाई का टुकड़ा उस पर, तो बाबा जी सो गए, चरणों में कोई बिछाने विछाने कुछ नहीं, एक तरफ दामोदर पर आए, दामोदर की स्त्री वही चरणों में सूते हुए पड़े लोटे हुए, नींद आई कि दम जग गए बाबा, जग गए बाबा। तो बाबा ने कहा कि भाई तेरा ये मस्त स्त्री केसर सज जाए, उस शरीर में गहना कपड़ा तेरे से अच्छा हो जाए। दामोदर कह दिया मकान को एक मकान ऐसा बन जाए। धन धान्य समृद्ध ऐसा बड़े मकान बन गया, ऐसे मन भगवान रवाना हुए। सुबह जल्दी नींद जगी ब्राह्मणी की, उसने देखी बाहर का है भैया, ये बाहर कहां से आया, देखा तो श्रृंगार बड़े कपड़े, इधर देखा तो पति देव के कपड़े बढ़िया बढ़िया, इधर देखा तो मकान बहुत बढ़िया बना हुआ। तो उन्हें चरण पकड़ा और कह पा रहे महाराज पति पति क्या क्या बात है, तो देखो तो सही, वो ब्राह्मण महात्मा कहां गए, संत जी तो दौड़े बाहर, बाहर दौड़ते हुए मिलेंगे, आप देखो तो सही, अपने शरीर को देखो, मेरे तरफ देखो, मकानी तरफ तो देखो, कहते कहां गए बाबा जी, कहां गए बाबा जी, कहां गए। तो देखो ये बाबा जी मामूली नहीं थे, इतना सब हो गया है, तो देखा तो बोल गया ये तो भगवान थे। अब महाराज करने लगे प्रार्थना कि नाथ हम तो पहचान नहीं सके, आप इस तरह से गुप्त हम क्या पहचाने, बड़ों बड़ों की बुद्धि चकित हो जाती है आपको पहचानने में, हम तो गरीब ब्राह्मण क्या समझे। रोने लग गए, तो भगवान प्रकट हो गए, कह तुम रो मत, तुम अतिथि सत्कार करते हो, तुम्हारा भाव इस वास्ते तुम्हारे को दिया है, तो सदा व्रत बांटने का भी उन्हीं को ही देते हैं लोग, जिनके देने का स्वभाव होता है, स्वभाव वालों को भगवान भी देते हुए देने तो तुम रहेंगे, चीज देंगे भगवान, इस तरह से हुआ तो अतिथि सत्कार करना ये गृहस्थ का खास धर्म है। कोई भी आ जाए उसको बनी बनाई रोटी, विद्यार्थी गुरु को बताया अच्छा बताया, भिक्षुक विद्यार्थी गुरु कोष बताया, ब्रह्मचारी यतिश देव विद्यार्थी गुरु कोष का, अद्वगा क्षीण वृत्ते सड़ेते भिक्षु का स्मृता, छह प्रकार के भिक्षु होते हैं। ये तो ब्रह्मचारी जो बड़ पढ़ा है ब्रह्मचर्य पालन करता है, भिक्षा लाकर निर्वाह करता है। एक साधु सन्यासी जो कुछ कुछ पास में रखते नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे परे मत भूखे रह जाए। ऐसे साधु सन्यासी आवे तो बनी बनाई हुई रोटी को दे देना। ब्रह्मचारी यथेश्वर विद्यार्थी एक विद्या पढ़ने में लगा रात दिन, उसके पास में कुछ है नहीं, वो भी साधु भोजन देना। एक कोई गुरु सेवा में ही लगा है, साधु है वो ब्रह्मचारी है, और कोई काम ना करता नहीं गुरु सेवा करता है, तो वो भी भिक्षु होता है। अद्भुत है कि रस्ते चलते चलते आदमी आ जाए रात्रि में ठहरे, तो वो भिक्षु को अन्न दे, जैसे ही उसको अन्न देना, भोजन देना, जल पा देना, स्थान देना के ले जाओ। और क्षीण वृत्ति से कोई आग लग गई, चोर आएगा, डाका पड़ गया, जो सब कुछ लूट लिया, आग दिया, घर भी जल गया, कोई वस्तु नहीं रही, तो वो भी भिक्षु साधु सन्यासी की तरह है। ये छह तरह के भिक्षु है। तो ये आ जाए तो गृहस्थ के लिए बहुत खास बात है कि उसको भोजन दे देना। अपने जैसी बनी बने जैसी रसोई बहन माताएं ज्यादा करती तो कई तरह की बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती है, संतों की सेवा करेंगे। अगर कोई ऐसा मन नहीं लावे तो ठंडी वासी रोटी देती है, ठंडी नहीं मिले तो फलगम जेठ जैसे नीचली रोटी निकाले ये दे दो, जो कोई काम के नहीं है। एक ये रद्दी चीज में निकल जाए, बाबा जी निकल जाए, दो काम हो जाए। ऐसा नहीं, आप जैसा भोजन करते हो वैसा, ना कोई बढ़िया बनाना है ना घटिया देना है, जैसा अपने पाओ वैसा ही देने का अधिकार उसी का है जो आप पाते हो। आप नहीं पाते निकम चीज देनी नहीं चाहिए, बाहर रख दो, कुत्ता खा जाओ, कोई ले जाओ, कोई हर्ज नहीं है। देने की चीज वही होती है जो आप ठीक तरह से काम ले सकते हो, जिसमें भी बढ़िया से बढ़िया दे। जैसे खेती करने वाले बीज बोते हैं तो बढ़िया बाजरी रखते हैं, बीज की बाजरी कहते हैं उसको, वो बढ़िया दाने रखकर खेत में बोते हैं जिससे बढ़िया खेती होती है। तो भाई ये देना है, ये एक बीज बोना है, इस वास्ते बढ़िया चीज दो। अपने दिल में दिखाई विश्वास हो, अधिक बनाया करना जरूरत नहीं है, अपने अच्छी तरह से भोजन कर सको, अपने जैसे चीज दो, साग दाल दो, दुकान ठीक हो जाए। भिक्षा कैसे काम पड़ा मेरे, तो भिक्षा में कोई कोई साग, कल का साग है तो दुर्गंधी आने लग गई, वो साग में दे दिया तो सब साग दुर्गंधी वाला हो जाता है। तो दुर्गंधी भी साग दिया है, साग क्या कमर बिगाड़ दिया, पहले वाला साग भी बिगड़ गया। तो ऐसी चीज नहीं देनी जिससे कि उनके बिगाड़ हो जाए। आप न खाओ वो चीज देने का अधिकार नहीं है, बाहर रख दो, कोई खाओ कोई ले जाओ, तो कोई हर्ज नहीं है, देने का अधिकार नहीं। इस तरह से भिक्षु को देना है, ये गृहस्थ का खास धर्म है। कोई घर पर आवे तो खाली न जाए। अतिथि भगनाश गृहात प्रतिनिवर्तते, कोई आशा आशा करके आया भिक्षु और उसको दिया नहीं, और ऐसे चला जाता है, सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्य महाराय गच्छति, तो पाप तो दे जाता है पुण्य ले जाता है। भिक्षु आता है न्याय युक्त जो मांगना वो खाली नहीं जाता। इस वास्ते कह रहे हैं ब्रह्मचारी यथेश्वर पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोरन्न मदत्वाच भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्। ऐसे ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी त्यागी है, ऐसा पुरुष आया भिक्षा के लिए और उसको कुछ नहीं दिया, वो खाली चला जाए तो दोष लगता है। एक महीने का चांद्रायण व्रत करे तो पाप प्रायश्चित होता है। इस वास्ते सदा याद रखो गृहस्थों के लिए ऐसा कहा गया देव, तो वो तो काम तो कुछ किया ही नहीं। अरे काम क्या किया, वो पास में नहीं रखता, वही तो काम किया है। साधु सन्यासी है, उसने त्याग किया है, तो किसी हमारे घर आए हमारे क्या काम किया, तो एक बात बतावा आपको, वो भी वो 100, 200, 500 रुपया तो पास में रख सकता था ना, कमा कर रख सकता, मांग कर रख सकता था, तो उन्हें रुपया लिया नहीं, अपने पास रखा ही नहीं, तो धन रहा तो आप में ही, कहाँ रहा इसको कुछ पता नहीं। परंतु 1000-2000 वो इकट्ठा कर सकता था, नहीं किया, वो आप में ही रहा। तो वक्त पर रोटी नहीं दो आप उसको, तो रोटी दे देनी चाहिए थोड़ी मला है। सत्य सारू दत्त बांट लिया ना आपको, कहे तो मरा अपने जैसे घर में बने उसमें शक्ति अनुसार दे दिया बस थोड़ा सा। लोगों में कहा होते फूल सारू पांखड़ी, जैसा फूल वैसी पांखड़ी होती है, तो जितना दे सको उतना दे। शक्ति से ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं है। सुगमता से देशों को इतनी चीज देनी है, और दानियों ने तो बड़ा बड़ा काम किया है। हरिश्चंद्र आदि ने राज्य का राज्य उठा दिया, दे दिया, भिक्षु बन गए साहब, कितनी विलक्षण बात थी। तो इतनी बात तो अलग है, अपने तो जैसी शक्ति हो उसके अनुसार उसको कुछ दे दिया, तो कितनी बढ़िया बात है। तो गृहस्थ का धर्म है तो मीठा बोलन निम चलन पर अवगण रखलेन, पांचों संगा नानगा हरि भज राधा ध्यान, भगवान का भजन करना हाथ से लेना, सेवा करना और भगवान को याद करना, दो ये मनुष्य मात्र की भी चीज है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भाई हो, बहन हो, कोई कान हो, भगवान को याद रखना सामान्य धर्म है। आनंद यो निर्क्रियते पारंपरिया सामान्यवत, शांडिल्य सूत्र है भक्ति के सूत्र, और शांडिल्य ऋषि लिखते हैं कि ये भगवान का भजन करना कहता है, ये सबके लिए है। सामान्य सामान्य दया क्षमा उदारता सत्यवासन आदि सामान्य धर्म है, ऐसा है पारंपरिया सामान्य है। भजन करना, भगवान का चिंतन कर याद करना सब वर्ण और सब आश्रमों के लिए खुली है, करना चाहिए। ऐसा अपना जीवन पवित्र बन जाए, ये बातें ही सत्संग में सीखने की है। सत्संग के द्वारा ये बातें सीख धारण कर लेना। आरंभ में कहा था ना, जो साधन सुगम मालूम देता हो वो शुरू कर देना, अभी आज से ही शुरू कर देना, फिर करेंगे ये पता नहीं है। एक एक बड़ी विशिष्ट बात है, आप विचार करो अच्छा वो जल्दी शुरू कर दो, नहीं तो काल खा जाएगा। ये काल है ना, ये जमराज है समय, उस समय बीतने पर वैसा भाव नहीं रहेगा। इसी तरह से कोई बुरा काम करने की मन में आ जाए तो अभी नहीं उनको टाल दो, फिर बुरा विचार हट जाएगा, उसको भी काल खा जाता है। भली बुरी कोई बात है आपके मन में, उसको थोड़ा समय लगने से काल खा जाता है, फिर वैसी बात रहती नहीं। इस बात से मानुष पुण्य हो नहीं पापा ये बताया, मन का पुण्य किया और फिर हो नहीं सका, और पाप करने के मन में आ गई फिर बदल गया मन, तो मानसिक पाप लगता नहीं, पुण्य लग जाता है, क्योंकि भीतर में सद्भाव अच्छे हुए तो अंतकरण निर्मल हो जाता है। तो इस तरह से सेवा करना, सबकी सबको सुख पहुंचाना गृहस्थ का खास धर्म है, क्योंकि वानप्रस्थ है वो पैसा रखते नहीं, संन्यासी पैसा रखते नहीं, ब्रह्मचारी भी पैसा रखते नहीं। इससे एक आश्रम ही है गृहस्थ आश्रम से उपालन करने वाला। हमारे संत को कह देते तुम भी हमारे माँ बाप हो, तुम ही हमारे बेटा बेटी हो, कई बार सुनाया आपको। तो माँ बाप क्या गृहस्थों से हम जन्मे हैं, गृहस्थों से पालित होते हैं, तो गृहस्थ तो हमारे माँ बाप ही हुए, और बूढ़े हो जाए रोगी हो जाए तो सेवा कौन करे, गृहस्थ सेवा कर, तुम बेटा बेटी भी तुम ही हो भाई, सेवा ही तुम ही करोगे, बूढ़े बड़े और कौन करेगा। तो सेवा करना ये खास धाम गृहस्थ का खास कर्म है, अन्न देना विशेष रस धर्म है ये, ऐसे अपने गृहस्थ का पालन करो तो गृहस्थ में रहते हुए मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। साधु बाबा होकर के जो कल्याण करेंगे उनका कल्याण कठिन है, अरे साधु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भजन ध्यान करो, न्यायुक्त काम करो तो कल्याण हो जाए। मैंने एक दिन बताया था ना, गीता के 3rd अध्याय लिखने से एक बात समझ में आई कि अपना न्यायुक्त आचरण करो तो भजन ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायुक्त आपका आचरण वही भजन हो जाएगा, कल्याण करने वाला हो जाएगा। इस तरह से बड़ी सावधानी से अपने आश्रम में रहते हुए काम करो, ठीक तरह से अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, ठगी मत करो, धोखेबाजी मत करो। दूसरे को दुख देना है ये अपने दुख का बीज बोना है। अभी देखते हैं कि दूसरों को दुख देते हैं, अपना काम सिद्ध करते हैं, अपना काम तो सिद्ध थोड़ा होगा, दुख दिया है वो बीज बोया गया, इसका फल मिलेगा बड़ा भारी भयंकर दुख, तो वो दुख भोगना पड़ेगा। इस बात का दुख मत दो भाई, एक गुना गुना सहस गुना पुण्य होता है तो हजार गुना हो जाएगा दुख देने में, ऐसे सुख देने में भी हजार गुना हो जाएगा। तो जहां तक बने सुख दे वो दुख मत दो किसी को भी, सबका भरो सर्वे भवन तो सुखिना, सदा भाव ये रखो कि सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके घर में आनंद मंगल ही होता रहे, सब सुखी हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब योगी हो जाए, घर में योगी हो, घर में योगी हो जाए, जो गीता जाने जो गीता ही जान, जो गीता ही जाने तो सो गीता ही जान, जो गीता ही न जाने जो गीता ही न जान, तो गीता जाने तो गीता के अनुसार अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए योगी हो जाता है वो, जो गीता ही जानिए जो गीता ही जान, गीता जानता है, जानने का अर्थ गीता के अनुसार काम करता है। गीता में क्या है, भगवान को याद रखना और कामना का त्याग करना, कामना के होने से ही पाप लगते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज पाप करना कोई चाहता नहीं, क्योंकि पाप का फल दुख है, तो दुख कोई चाहता ही नहीं तो फिर ये पाप क्यों कर लेता है। तो भगवान ने उत्तर दिया भी काम ऐसे कामना है मन में, धन की भोगों की भीतर की इच्छा है, ये इच्छा पाप करवाती है। तो ये लोभ से कामना से काम और क्रोध और लोभ तीन बताया नरकों का दरवाजा। तो कामना से व्यभिचार आदि दोष होते हैं, लोभ से झूठ कपट चोरी आदि दोष होते हैं, क्रोध से हिंसा करुआ वचन आदि होते हैं, ये नरकों के दरवाजे हैं। तो सावधान रहो हरदम, जीवन थोड़ा है, बहुत सा चला गया है और रहा हुआ भी जीवन जा रहा है, तो अच्छे अच्छा संग्रह करो, धनी बन जाओ, माला माल बन जाओ, यहां से मरने पर खुश हो जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे, आनंद से मरोगे, अच्छे आचरण किया है वे जीते भी अच्छे आनंद से है और मरते भी बड़ी मौज से है, और खराब आचरण किया है जीने में भी दुख होगा और मृत्यु में भयंकर दुख, उसके बाद नरकों का दुख और भयंकर होगा। इस बात भी अपने अपने हाथ है, इस मानसा से इस बात जैन धर्म शिव धर्म के करणिया सक्रिय काम, जगन्नाथ जगदीश सुनो प्रभोदास राम, तो भगवान का नाम लेते रहो, परमात्मा का चिंतन करते रहो और शुभ आचरण करो और भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ सद्बुद्धि दो, ऐसी कृपा करो आपके सिद्धांत के अनुसार हम बन जाए। संत महात्मा भी ये चाहते हैं हमारे सिद्धांत के अनुसार बने, भगवान भी ये चाहते हैं हमारे सिद्धांत के अनुसार बने, और हम कृपा करने हमारे आपके सिद्धांत बनाओ तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, क्योंकि तो चाहते ही वे बड़ी मदद करेंगे, तो अपना ठीक अच्छा आचरण आप साफ होने लगेगा, भगवान का भजन करने वाले के मन में शुद्धि आती है, पवित्रता आती है, तो पवित्रता में पवित्र पवित्र भाव पैदा होते हैं, वे सद्गुण कहलाते हैं, पवित्रता का आचरण होता है वो सदाचार कहलाता है, आचार प्रभो धर्म, धर्म से प्रभुता, शौचाचार सदाचार से धर्म का अनुष्ठान होता है, धर्म के मालिक भगवान होते हैं, धर्म का अनुष्ठान करने से मालिक से प्रेम हो जाएगा, इस वास्ते प्रेम करने के लिए भगवान की प्रार्थना करो, भगवान से कहो और अपने अच्छा आचरण करो, जो सत्संग में सुनने में आ जाए वे धारण करो। ये बातें हैं बहुत कीमती, लोगों ने हीरा पन्ना आदि को रत्न माना है, वे तो रत्न यहीं रह जाएंगे, और ये रत्न धारण करो तो भीतर में जमा होंगे, मरने पर भी पीछे नहीं रहेंगे, अपने साथ चलेंगे, और आप अच्छे आचरण करो तो दूसरे आचरण भी अच्छे सीखेंगे, वो भी आपको मातम होगा, आपके संग से, आपके देखने से, आपके वचनों से, आपकी शिक्षा से अच्छा आचरण मिलेगा, तो उसमें आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा अच्छे आचरण करने से, तो अपना और दुनिया का सबका भला हो जाए, अभी वर्तमान में और परिणाम में सदा के लिए सबको सुख हो जाए, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव रखो सदा ही, किसी को भी दुख न हो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंदाकरण करने वाले का भी संत लोग भला करते हैं, उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं, जिससे उनका सबका कल्याण हित हो जाए। तो सर्वभूत हिते रता ते प्राप्ति माँ में हो, तो सगुण की प्राप्ति चाहने वालों के लिए भी ते प्राप्ति माँ में हो, सर्वभूत हिते रता, और निर्गुण की प्राप्ति करने वालों के लिए भी कहा है लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैतात्मान सर्वभूतेति रता। तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी सबके हित की प्रयत्न हो, सबका हित जाएगा तो उसका हित स्वतः होगा, भाव उसका शुद्ध हो गया, उसकी अशुद्ध अपवित्रता पवित्रता आएगी कैसे, भीतर से पवित्रता निर्मलता रहेगी तो सब लोग निवृत्त हो जाएंगे, उनके संग का असर पड़ेगा, वाणी का असर पड़ेगा, आचरणों का असर पड़ेगा, उनके जीवनी से असर पड़ता है, उनके मरने पर उनका नाम लेने से असर पड़ता है, धर्मों की वर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, धर्मावतार थे साक्षात धर्म थे, नाम लेने से भी धर्म बढ़ता है। तो ऐसे पवित्र बनो जिससे आपके नाम से, आपके चिंतन से, आपके आतुर से, आपके संग से, आपसे मिलने से लोगों का सुधार उद्धार हो जाए। तो कितनी विचित्र बात है, पैसा खर्च करना नहीं पड़े और लोगों का उपकार हो जाए, अरे उपकार पैसों से इतना बढ़िया नहीं होता है, अच्छे आचरणों से जो दूसरों के अच्छे आचरण बनते हैं उनसे जो लाभ होता है उतना लाभ धन से नहीं होता, धन से लाभ होता है, अन्न दिया अन्नदान महादान है, पर अन्य क्षणिक तृप्ति थोड़ी देर तृप्ति, फिर भूख लग जाती है और ये अच्छे आचरण हो जाते हैं तो इस जन्म क्या जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए तो कितना इसका पुण्य है। ऐसे पुण्य का पुण्य तो सबको दो, आदर करो, सत्कार करो, मीठा बोलो, भीतर से सदा भाव निर्मल रखो। एक सज्जन थे, वो बोले वहां पर काशी की बात सुनी है, तो वहां बोले कि मेरे को क्रोध नहीं आता, आप चाहे परीक्षा कर लो, हमारी क्रोध नहीं आता। तो वे सज्जन बोले कि बड़ी अच्छी आनंद की बात है, आपके क्रोध के लिए मैं व्यवहार क्यों बिगाड़ू, व्यवहार बिगड़े तभी नहीं क्रोध आ गई, तो बड़ी अच्छी बात है, तो तुम्हारे क्रोध ने मैं व्यवहार क्यों, अपना व्यवहार क्यों बिगाड़े अपना। एक नाथ जी महाराज थे, उनमें विलक्षणता थी, क्रोध नहीं आता उन्हों, तो एक बार तो कहे स्नान करने के लिए, पास में नदी चलती है वहां पैठण में, तो स्नान करने के लिए तो वहां एक मस्जिद में एक रहता था मुसलमान फकीर, तो वे स्नान कर आ रहा है वो थूक दे ऊपर, तो फिर जा स्नान कर आ रहा है फिर थूक दे, फिर जाकर आ रहा है थूक दे, तो कुछ 100 बार कटिया स्नान किया उसने, तो वो जार पग पकड़ जाके बना जा आप क्षमा करना, आप तो कितने सहिष्णु है, इतना मैंने किया फिर क्रोध नहीं करते आप। तुम बोले कि देखो तुम्हारे कहने से आज अपने स्नान करिए, हमारे हिंदुओं में स्नान का नावेद तो पुण्य, स्नान के जो पुण्य होता है, आपने कृपा तो 100 बार स्नान हो गया, नहीं तो हम एक बार स्नान करते, तो हमारे बहुत लाभ हुआ आपके तुकने से। तो फिर वो तो उनका शिष्य ही बढ़ गया, फिर तुम नमाज कितनी पढ़े, 2 दफे 3 दफे 4 5 दफे नमाज पढ़ो, हर समय पढ़ो, पश्चिमी तरफ देख दो चारों तरफ परमात्मा है, परवरदिगार सब जगह है, और तुम भजन कर लो, तो उसकी क्षमा करने से भजन में लग गए लोग, कितनी विलक्षण बात है। तो अच्छे सद्गुण सदाचारों से जो दुनिया की सेवा होती है वो शुरू पैसों से नहीं होती है, ऐसी सेवा आप कर सकते हो, मौत से कितनी आनंद की बात है। तो ये अवसर है, अभी मौका है, बड़ा सुंदर लगा हुआ, आज सुबह सुनाया था ना, जैसे 84 लाख में जीव है वो मनुष्य एक योनी है, ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका कभी सा ही मिलता है, ये हरेक समय हरेक को मिलता नहीं है, तो मिलता उसे लाभ ज्यादा ज्यादा उठा लेना चाहिए। गंगा जी का प्रयत्न है तो 1-2 बार 3 बार स्नान करना चाहिए गंगा जी में, कि ये मिलेगा कहाँ, हरदम थोड़ा ही मिलता है, ये हरेक जगह नहीं मिलता, ऐसे सत्संग है, भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे डुबकी लगाओ, समझी मज्जन पर देखिए तत्काला काक हो चकबक हो मराला। ये साधु समाज प्रयाग का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इस सत्संग में डुबकी लगाओ, साधु समाज प्रयाग में स्नान करो तो तत्काल फल होता है, तीर्थों के नहाने का फल तो जन्मांतर में होता है, पर सत्संग में डुबकी लगाने गंगा पापम शशि तापम दैन्यं कल्प तरुष तथा पापम तापन च दैन्यं च हरित साधु समाज। गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, चंद्रमा की शीतल छाया में शांति मिले ताप नष्ट होता है, और कर्मतरु के नीचे जाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। ये तीनों के जो होता है सत्संग में पापम तापन दैन से हरित साधु समागम, सत्संग करने से पाप दूर हो जाते हैं और हृदय ताप भीतर का हृदय का ताप मिट जाता है और मन से ही चीज मिलती है। तब प्रसाद ही दीक्ष तनोति कीर्ति क्या क्या इसमें सत्संगति कथा किम न करोति पुरुषा, सत्संग क्या नहीं करता, कितनी बड़ी बात है। सराम प्रसंगात बिरी बम ही जे संविधो हमंत हित कर न साय ना कथा तजो सनाता स्वर्ग वर्तमे श्रद्धा रतिर भक्त अनुक्रमेश। सत्संग करने से भक्ति पैदा हो जाती है, भक्ति तात अनुकूल मूला मिले जो संत हो या अनुकूला, संत मिलते जो संतों को मिलने से उनका सत्संग करने के सदाम प्रसंगात ममवीर संविदो भगवान की प्रभाव की बातें सुनने से, सत्संग की बातें सुनने से, भगवान का यश और गुण सुनने से, तत्व का विवेचन और सुनने से, हृदय और कानों को रस देने वाले कथा सुन रहे हैं, तत्जोशना उत्काश कथा के सेवन करने से आशु अपवर्ग वर्तमाने श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये अनुक्रम से श्रद्धा रतिर भक्ति जागृत हो जाती है हृदय में, तो सत्संग करने से स्वतः लाभ होता है स्वाभाविक। इस वास्ते कहा करता हूँ कि साधन करके अपना सुधारना है वो तो कमा करके धनी बनना है, और सत्संग मिल जाए तो ये तो गोद चला है, कमाई कमाई बरसों की संग्रह की हुई बात है हमारे को मुफ्त मिल जाते, थोड़े समय मिल जाता है तो कैसी बढ़िया बात है। तो हमारा और दुनिया का सबका कल्याण होता है, हित होता है, इस बात से बड़ी तत्परता से बड़े उत्साह से इन बातों को काम में लाओ। गीता रामायण अपने जैसे ग्रंथ हमारे को मिल गए हैं, भगवान का नाम हमारे को मिल गया है, कैसे सुलभम भगवान नाम अरे वागस्ती वशवर्तनी, भगवान का नाम सूर्य वर्धमान अपने मुंडे में, संग्राम दास जी महाराज तो मुक्ति मुंडे में थारे थारे मुक्ति में मुंडे में थारे मुक्ति राम 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 कैसे भारतीय युग तो भले ही विश्व भाषा तो भले है गे है कि द्वार थले तो चंद्र प्रदेश जगह में ना नागने से निकले तो ना उथली हरि नाम को रसना बिजली तो जले तो राम गुनावरी गाये बिना गुणहीन गंवारिणी क्यों नहीं गली तू यदि वे सारे सदरा मधुर प्रिय तेरे को मीठा प्यारा लगे थे राम नाम पियो सिर्फ जगह सिर्फ वे निरंतर हरदम पियो राम 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 मीठा से मीठा नाम हरि राम जी को नाम सदाई मिश्री जब साधु फूंद गिरी मीठा नाम है भगवान का जो निहाल जाओ कैसी बढ़िया बात है। ये कलयुग का मौका ये भगवान का नाम चहु जुग चहु सुते नाम प्रभाव परंतु कली विशेष कलयुग में नाम का प्रभाव विशेषता से है, नहीं कल केवल धर्म विदेव कल केवल नाम उधारा कर्म विवेक और भक्ति ये नहीं बदल जल्दी तीनों है ये कर्मयोग विज्ञान योग भक्ति योग। नाम जब सब सुलभ हो जाते हैं, नाम की कृपा से सब साधन श्रेष्ठ अपने आप मिलते हैं, नाम महाराज बड़ी कृपा करते हैं। ये नाम है गीता जी है रामायण है ये ग्रंथ है ये प्रासादिक ग्रंथ है, अपनी तरफ से कृपा करके आप हाजिर होते हैं। तो गीता पढ़ना चाहो तो हुए भगवान का नाम सत्संगति गीता रामायण का पाठ कितनी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बढ़िया सामग्री हमारे को मिल रही है। इस बात रात दिन भगवान नाम में लग जाओ, जो साधन अपने सुगम मालूम करना शुरू कर दो वो कठिन में उस अभी स्थगित को कठिन भी सुगम हो जाएंगे और आपसे आप होने लगेंगे। साधन होने पर साधन संपत्ति आपसे आप आती है, मृगा मृगी संघ अनुपर्जंती समान शील जिसने सुख्यम, इस बात से अच्छी बात है आपसे आप आने लगेगी। तो ये केवल निमित्त मात्र बन जाओ भगवान इसमें शायद भजन ध्यान साधन में भगवान सहायक संत महात्मा सहायक, पहले जितने संत हुए उनकी सबकी हमारे साथ में साथ और अगर संत है जितने और अगर ही कोई संत हो गए तो उनकी भी हमारे सहायता मिलेगी भजन ध्यान करने से, कितनी बढ़िया बात है। और उनकी कृपा से सुगमता से कल्याण हो जाएगा। नारायण 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 नारायण।